السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی باقاعدہ طور پر سورة الفاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں. سورت الفاتحہ، جس کے میں نے بہت سے نام آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ سورت الشفا ہے، بلکہ ہر مرض کی شفا ہے. اور یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے، ابن عباس سے نقل ہے کہ فاتحہ الکتاب قرآن کے دو ثلث کے برابر ہے، یعنی 2/3 کے برابر یہ اکیلی سورت ہے. حضرت جابر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے، اور رقیہ بھی اس صورت میں، اور زہر کا علاج بھی اس صورت میں ہے. اور یہ صورت قرآن کریم کا آغاز ہے، یعنی قرآن کریم کی شروعات، اوپننگ اس صورت سے ہوتی ہے، کھولنے والی ہے. اور یہ صورت دراصل ایک دعا ہے، اور قرآن کریم اس دعا سے شروع ہو رہا ہے کہ یعنی اگر آپ اس کلام پاک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اور دعا انسان اسی چیز کی کرتا ہے جس کی اس کو طلب ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کو حاصل کرنا ہے، اور وہ کچھ چاہتا ہے اپنے لیے. اور اس صورت میں صراط مستقیم کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ یہ دعا کرو، یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس کو صراط مستقیم مل جائے، اور یہ خود سے وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. انسان کو اس چیز کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ جو راہ حق ہے اس کی طلب کرے، اس کی تلاش کے لیے اس کلام کو پڑھے، اور یہ جان لے کہ یہ راستہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے. اس کی رہنمائی کے بغیر انسان یہ راستہ نہیں پا سکتا. آپ سورہ فاتحہ کا قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اس سے سمجھ لیں کہ یہ دعا ہے، اور باقی سارا قرآن جواب دعا ہے. بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری رہنمائی فرما دے، اور جواب میں پروردگار پورا قرآن آپ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت، یہ ہے وہ رہنمائی جس کی تم نے مجھ سے دعا کی تھی. تو آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی پہلی آیت اس سورت کی. جیسے میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ یہ سورت بہت ڈیپ معنی رکھتی ہے، اس لیے ہم اس سورت کو تفصیل سے پڑھیں گے تاکہ آپ جب نماز میں بھی اس سورت کو پڑھیں تو آپ کو لطف آئے اس کو پڑھنے کا، جب آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. تو دیکھتے ہیں پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. پہلا لفظ الحمد، اس کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. پہلا پارٹ ال، دوسرا پارٹ حمد. آگے دیکھیں للہ، اس کو بھی ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، لی اور अल्लाह, तीसरा लफ्ज रब, और चौथा अल आलमीन, अलिफ लाम अलग और आलमीन अलग। अब देखिए इसका माना, अल का माना अलग होगा, हम्द का अलग, ली का अलग, अल्लाह और फिर रब, फिर अल, फिर आलमी। यानी हम इनको इस तरह, इस एक आयत को 7 हिस्सों में डिवाइड करके फिर इसका माना इंशाल्लाह देखते हैं। पहले सबसे अल का माना, याद रखिए ये जो 2 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज है अल, ये अल इस्तिग़राकी कहलाता है। जैसे आप कहते हैं गर्क हो जाना, आपको ये नाम ना भी याद रहे तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि इसमें माना आता है कि तमाम जो हम इसका माना लिखेंगे वो लिखेंगे तमाम तारीफ। अलहम्द का माना तमाम तारीफ और शुक्र। तो ये तमाम का माना कहाँ से आया? हम्द में नहीं, अल में है तमाम का माना। जैसे कि इन्नल इंसान लफी खुसर, तो अल इंसान, वहां पे भी अल अल इस्तेगराकी है, यानी तमाम इंसान खसारे में है, कोई भी बचा हुआ नहीं है। तो ये माना दे रहा है अल कि तमाम तरह की, कोई बाकी नहीं रह जाती, तमाम तरह की तारीफ, तमाम तरह की, या कहें हम्द, तमाम किस्म की हम्द, जो भी हम्द की कोई किस्म हो सकती है वो ये आपने अल से समझा। अब आगे लफ्ज है हम्द, हम्द को आप जरा ज्यादा गौर से सुनिएगा। हम्द का माना क्या? हम्द को हम आम जो जुबान में समझते हैं तो हम सोचते हैं कि हम्द का माना है तमाम तारीफ, लेकिन ये अधूरा माना है। इसका माना सिर्फ तमाम तारीफ नहीं है, बल्कि इसका माना है तमाम तारीफ और तमाम शुक्र। तमाम कहाँ से आया? अलिफ लाम से। ठीक है, तो सारा शुक्र और सारी तारीफ। अब ये दो अलग अलग क्यों बयान हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि बाज दफा इंसान किसी की तारीफ करता है लेकिन उसमें शुक्र नहीं होता। मसलन आपने कहा ये लड़का बहुत लायक है, तो तारीफ तो है लेकिन इसमें शुक्र नहीं। आपको किसी ने कोई चीज पकड़ा दी तो आपने उसका शुक्रिया अदा किया, इसमें शुक्र है मगर तारीफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह में शुक्र भी है और तारीफ भी है। तारीफ को अरबिक में मदह कहते हैं या सना कहते हैं। असल में ये तमाम अल्फाज मदह, सना और हम्द और शुक्र, ये सब करीब करीब माने रखते हैं। शुक्र तो उस वक्त अदा किया जाता है जब कोई आपके ऊपर कोई एहसान करे, या आपकी कोई जरूरत पूरी करे, या आपकी कोई तकलीफ दूर करे, तो आप कहते हैं शुक्रिया। हम्द का कंपोनेंट हो सकता है शुक्र, लेकिन शुक्र पूरा माना नहीं अदा करता हम्द का। क्या? क्योंकि शुक्र तो सिर्फ तभी होगा जब आपको कोई फायदा पहुंचे किसी से, जबकि हम्द में तो ये है कि कोई फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, उसकी तारीफ है क्योंकि वो तारीफ के लायक है। जैसे आपने कहा लड़का लायक है, तो इसके अंदर शुक्र तो है ही नहीं, ये तो एक तारीफ है। या आपको मैंने दूसरी एग्जाम्पल दी, उसमें शुक्र है लेकिन उसकी तारीफ नहीं है। जबकि आप जब हम्द करते हैं तो उसके अंदर 2 चीजें लाजमी हैं, एक शुक्र और एक तारीफ। और तारीफ के लिए जो अरबिक के अंदर वर्ड है वो सना का है, मदह भी नहीं। मदह भी तारीफ को कहते हैं लेकिन मदह तब होती है जब कोई चीज इख्तियारी हो या गैर, यानी इंसान की अपने खुद ही पोजेस की हो उसने, या फिर किसी ने उसको दी हो, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला की तो सारी खूबियां जो हैं वो उसकी, वो खुद पोजेस करता है, ठीक है, खुद उसकी अपनी है, जबकि मदा में उसकी खुद की क्वाइड नहीं है, इख्तियारी नहीं है, अता करता है। मदा में तो इंसान की मदा हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए हम्द है, हम्द वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास है, बाकी किसी के लिए हम्द नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी सारी जो खूबियां हैं वो किसी से नहीं उसने ली, उसकी खुद की हैं। और इससे हमें पता चला कि हम्द, शुक्र और सना दोनों को जमा करके फिर अलहम्द बनता है। और हम्द का एक और तरह से भी माना किया गया है। हम्द का ये माना आप लिख लीजिए कि मोहब्बत और ताजीम के साथ तारीफ बयान करना महमूद की उसके कमाल के साथ। ये शेख हुसैमीन ने ये इस तरह से बयान किया इसको, यानी क्या, महमूद कौन होता है, जिसकी तारीफ की जाती, यानी उसकी तारीफ बयान करना, जैसे यहां पे हम कहते हैं अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना, लेकिन उसमें एक चीज लाजिम है कि मोहब्बत भी हो और ताजीम भी हो और कमाल के साथ, यानी कि पूरी परफेक्शन के साथ है। अब देखें, तारीफें तो बहुत से लोग दूसरों की करते हैं, मिसाल के तौर पे पुराने जमाने में शौरा बादशाहों की तारीफें किया करते थे, लेकिन उसमें लालच होता था, कोई मोहब्बत नहीं होती थी। अब लैला मजनू की कहानी में मजनू लैला की तारीफें कर ले, लेकिन उसमें मोहब्बत है, ताजीम नहीं है। तो अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ बयान करना कि नंबर वन वो तारीफ पूरे कमाल की हो, कमाल उसमें हो, यानी परफेक्शन हो। कैसे, कि जब भी उसका कोई भी अस्माए हुस्ना में से कुछ भी उठा ले, कोई भी उसकी सिफत उठा ले, हम ये कह रहे हैं वो कमाल की है, उसमें इतनी परफेक्शन है। अगर वो अल-क़ादिर है तो है, वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला। अगर वो राज़िक है तो उसमें भी वो कमाल पे है, कामिल है, वो मुकम्मल है, किसी और की उसको जरूरत नहीं है कि वो रिस्क दे। अगर वो पैदा करने वाला, हम उसको कहते हैं खालिक है, तो अरबों खरबों को रोजाना पैदा कर रहा है, और उसको पैदा करने के लिए कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ा, ना उसको कोई मुश्किल है, ना उसको किसी की मदद की जरूरत है, वो चरिंद परिंद हैवानात, कहीं कोई मादा अंडे दे रही है, कहीं कोई बच्चा पैदा कर रही है, कहीं एक से टूट के दूसरी चीज बन रही है, नई मखलूक रोजाना पैदा कर रहा है, और वो बेहतरीन खल्लाक है। वो अगर अलीम है तो वो कैसा अलीम है, कि वो कमाल के दर्जे का है, यानी जर्रे जर्रे से लेकर आसमानों और जमीनों और समंदर की गहराइयों और सितारों सैयारों तक, हर हर मखलूक छोटी से छोटी माइक्रोस्कोपिक से लेकर बड़ी से बड़ी तक का हर इल्म, इन एंड आउट, अंदर और बाहर, माजी और हाल और मुस्तकबिल का सब उसके पास है। एक का इल्म होना दूसरे से उसको बेइल्म नहीं करता, कि वो इसका इल्म तो है लेकिन दूसरे का इल्म नहीं। जब वो इसका इल्म उसके पास है तो दूसरे से वो यानी बेखबर हो गया, ऐसा नहीं। मखलूक में से किसी की आंख की पुतली भी हरकत करती है तो वो उसके इल्म में, और पत्ता दरख्त से गिर रहा है तो वो इल्म रखता है कब गिरेगा, किस वक्त गिर रहा है, और गिर के कहाँ पड़ा, और इस पत्ते को किस तरह जमीन में ये रुल गया, और इस पत्ते की कहाँ आगे इसके पीसेस, इसके टुकड़े टुकड़े होके कहाँ फिजा में बिखर गए। उसको इल्म है कि एक उसकी मखलूक है, वो किधर एक जानवर है, एक बकरी है, वो किधर जिबा हुई, उसका गोश्त किधर किधर जाना है, किसने खरीदना है, किसके घर पहुंचना है, किसने पकाना है, किसने उसकी वो बोटी खानी है, और उसका फुजला बन के कहाँ पे पड़ा होगा, और फिर वो किस तरह जमीन में रुल जाएगा। वो इस बात का इल्म रखता है कि मादा के पेट में क्या है, ये बच्चा पैदा होगा तो कैसा होगा, इसकी क्या तकदीर होगी, इसने कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, इसका अमल क्या होगा, इसका रिस्क क्या होगा, ये किधर इसकी शादी होगी, किधर मरेगा, इसके टुकड़े, इसके जर्रे जर्रे कहाँ हवाएं उड़ा के ले जाएंगी, यानी हर चीज का इल्म। और वो इस इल्म से थकता नहीं, और ये इल्म उसको ओवर बर्डन नहीं करता, यानी उसकी हर खूबी जो भी उठा ले, कोई एक की बात नहीं हो रही, हर खूबी कमाल दर्जे की है, हर खूबी ऐसी है कि जिसमें वो परफेक्शन के लेवल पर है, हर सिफत में कमाल है। यानी अब आप देखें कि इरादा, मसलन उसका इरादा कैसा है, उस अपने इरादे में भी कमाल पे, कि फ़ालु लीमा युरीद, जो चाहे करे, उसका इरादा ऐसा है कि उसके इरादे को कोई तोड़ नहीं सकता, वो जो चाहे करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्हम्द कहते हैं ना, तो एक तो तमाम का माना आ गया, तमाम शुक्र और तमाम तारीफ, जी उसको कहते हैं हम्द। यहां तक हमने इसको समझा कि तारीफ होना सिर्फ नहीं, इसमें शुक्र भी है। इसी वजह से जो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इतना बड़ा कलमा और अल्लाह ताला को इतना पसंद है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये कलमा शुक्र है, इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरा शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने इस कलमे को बहुत पसंद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत में किसी को अल्लाह ताला तमाम दुनिया दे दे और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो ये कलमा सारी दुनिया से ज्यादा अफजल है। कुर्तुबी फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया दे दिया जाना इतनी बड़ी नेमत नहीं जितनी अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक मिल जाना, इसलिए कि दुनिया तो फानी है, इस कलमे का सवाब बाकी बाकी रहने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीजान को भर देने वाला कलमा है, इतना वजनी कलमा है कि मीजान इससे भर जाएगा और जमीन और आसमान के दरमियान के खला को भर देता है, इतना बड़ा कलमा। क्योंकि हमने जब कह दिया ना अल्हम्दु, अलिफ लाम लग गया, तो हम्द की तमाम तर किस्में सब की सब सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही साबित है, ठीक है। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जब उठते थे रात को, तो क्या फरमाते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत नूरु समावाती वल अर्द, व लकल हम्दु अंत कय्यूमु समावाती वल अर्द, व अंतल हम्दु। अल्लाह ताला की ऐसे तारीफ बयान करते थे, ऐसे अल्लाह ताला की, कि अल्लाह तेरे लिए सारी तारीफ है, क्योंकि तू ही है जो नूर है आसमानो जमीन का, वमा बैना हुमा, और तू ही है जो कायम रखने वाला आसमानो जमीन को और उनके दरमियान, वला कल हम्दु अंता रब्बुस समावाती वल अर्दी वमा बैना हुमा, वला कल हम्दु अंतल हक ववादुकल हक वलिकाउ का हक वल जन्नतु हक वन्नारु हक। तो अल्लाह ताला की इतनी प्यारी तारीफ कि अल्लाह तेरे लिए तारीफ है क्योंकि तू रब है आसमानो जमीन को और उनके दरमियान का, तू रब है, तू कायम रखने वाला आसमानो जमीन को, और फिर तू हक है और तेरी जन्नत हक है, इसलिए तेरी तारीफ है। अल्लाह ताला तेरी नार जो है, जो जहन्नुम है, वो हक है और तेरी तारीफ है उसके ऊपर भी। यानी अल्लाह ताला अपनी हर सिफत में, जितने भी आप उसके अस्माए हुस्ना को जानते हैं ना, वो सारे अस्माए हुस्ना आप ले लें, उन सब के एतबार से वो हम्द का मुस्ताहिक है। यानी हर एक में ऐसी खूबी है कि वो तारीफ के लायक है उसमें। मसलन आप अल बसीर ले लें, या मैंने अभी आपको अल अलीम बताया, या अल मुसव्विर ले लें, उसमें हम्द का वो मुस्ताहिक है, उसका शुक्र भी है उस पर और उसकी तारीफ भी है। और अलहम्द कहा गया अलहम्द। अब देखें यहां पे ये नहीं कहा गया, अलहम्द जो है ना ये फेल है, इससे आप समझिए ये फेल है, ये सॉरी इसम है, ये फेल नहीं है। अगर ये फेल होता तो फिर इसके अंदर जमाना पाया जाता, जैसे कि आप कहते ना मसलन उस वो खाता है, वो खाएगा, या वो खाता था, तो फेल के अंदर क्या होता है, जमाना पाया जाता है, जबकि इसम में जमाना नहीं पाया जाता है, इसलिए इसम में दवाम होता है। इसम जो होता है ना वो मुसलसल होता है, क्योंकि उसमें जमाना नहीं है ना। अगर यहमदू वो हम्द करता, या नहमदू हम हम्द करते हैं होता, तो आज करते हैं, कल करते हैं कि नहीं करते, या जब हम नहीं पैदा हुए थे तब थी कि नहीं थी। हम यहां पे जब अलहमदू पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की हम्द, सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला की हम्द आज है या होगी या होती थी, बल्कि क्या है, अलहम्द इसम के साथ है, तो यानी अल्लाह ताला की हम्द है, होती रहेगी, होती थी, सब में आ गया। ये फर्क होता है जब इसम और फेल इस्तेमाल होते हैं, आज नहीं सिर्फ हो रही या आइंदा नहीं होगी सिर्फ, बल्कि हमेशा इस जमाने की कैद से निकल गई ये लफ्ज जब हमने अलहम्द कहा, ठीक है। और दूसरे फेल जब होता है तो उसका कोई फाइल भी तो होना चाहिए, मगर जब कहा जाएगा ना हम्द अल्लाह के लिए, तो इसमें करने वाले का जिक्र नहीं है, इसलिए कि जब कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह ताला की हम्द थी, क्योंकि वो तो खूबियों का मालिक है, उसकी तारीफ थी, और जब कुछ नहीं होगा तब भी उसकी हम्द होगी, वो अलहमीद है, काबिले तारीफ है। अगर ये कहा जाए तमाम मखलूकात हम्द करती हैं अल्लाह की, तमाम आलमीन अल्लाह की हम्द करते हैं, तो क्या होना था, जब ये खत्म हो जाते तो क्या हम्द खत्म हो जानी थी? नहीं, हम्द अल्लाह ताला की जात के साथ मुत्तसिल है, अटैच्ड है, यानी वो अल्लाह, जैसे अल्लाह ताला कायम व दाइम है, इसी तरह उसकी हम्द भी कभी खत्म नहीं होगी। जब इंसानियत के फैसले भी हो जाएंगे तब भी अल्लाह ताला की हम्द होगी, और फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द अल्लाह ताला की हम्द बयान करेंगे, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कह के। तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम ऐसे ही कह देते, जब हालात से तंग हूं और कोई पूछे कि कैसा चल रहा है, बस जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वाकई उस वक्त आप अल्लाह ताला का दिल से शुक्र भी अदा कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं? जबकि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब यह है कि चाहे कुछ मिले या ना मिले उसकी तारीफ है, चाहे हालात अच्छे हैं या बजाहिर जो मुझे बुरे लग रहे हैं उसमें भी उसका शुक्र है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा काम भी हो जाता था जो कि तबीयत के खिलाफ होता या जिस तरह से चाहता वैसा नहीं हुआ, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आला कुल्ली हाल फरमाते थे, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमें कोई खैर का पहलू चाहे ना भी नजर आ रहा हो उसकी फिर भी तारीफ है और उसका फिर भी शुक्र है, क्योंकि हम नहीं जानते। आप एक मिसाल देखें, लकोदक सहरा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को छोड़कर आ गए। जरा सोचें, एक तने तनहा औरत, बच्चे सा के साथ, मासूम सा बच्चा, दूध पीता बच्चा है, दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान तो क्या, कोई चरिंद परिंद भी नहीं है, कोई घर बार नहीं, कोई कोई वाली वारिस नहीं, कोई भी नहीं। इस वक्त पे अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हौसला किसके अंदर होगा, जिसको यह यकीन होगा कि मेरे रब का फैसला भी काबिले तारीफ है, इस पे भी उसका शुक्र है, इसलिए कि जो मैं नहीं जानती वो जानता है, और जो अल्लाह को पहचानता ना होगा वो कहेगा किस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहें जी, इतने मुश्किल हालात हो गए, किस बात पे कहें, मेरे साथ तो क्या हो गया आपको क्या पता, किस बात पे शुक्र अदा करूं। और इसी वजह से जिसका बच्चा फौत हो जाए और वो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछता है कि मेरे फरिश्तों इसने क्या कहा था जब इसका बच्चा फौत हुआ। वो कहते हैं इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा या अल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए बैतुल हम्द बना दो, जन्नत के अंदर एक घर जिसका नाम हम्द का घर हो, इसने मेरी इस वक्त भी तारीफ की और शुक्र अदा की। तो अल्लाह ताला ही है जो काबिले हम्द है, किसी और की हम्द नहीं हो सकती। वाह, क्यों नहीं हो सकती भाई? और भी तो लोग हैं जो कि कुछ करते होंगे, कुछ किसी और की भी तो तारीफें हो सकती। बात यह है कि जितना कुछ हमें मिलता है, जितना कुछ हमें जिंदगी में कोई कामयाबी मिले या कुछ भी हमारा अच्छा कुछ चल रहा है ना, किसी ने हमारी हेल्प की या किसी ने हमारा साथ दिया, उस पर भी असल जो हम्द है, असल जो शुक्र है, वो सिर्फ अल्लाह ही का अदा करना है। बेशक हम इंसानों का शुक्र अदा करते हैं और इंसानों का शुक्रिया अदा करना भी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी नहीं कर सकता। लेकिन ये ना कि इंसानों का शुक्रिया अदा करते करते असल जिसका शुक्र अदा करना था वो ही भूल जाए, क्योंकि जो उसने हमारी हेल्प की, हमारे साथ कोई नेकी की, कोई भलाई की, वो भी वो नहीं कर सकता था जब तक अल्लाह ना चाहता। अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी, अल्लाह ने उसके दिल में डाला, अल्लाह ने उसे करवा लिया, तो वो हमारी मदद करने के काबिल हुआ। इसी तरह हम कोई मेहनत करते हैं, हम कोई मेहनत करते हैं और हम सोचते हैं अब मैंने मेहनत से इतना कमा लिया और मुझे इतना नाम मिल गया और ऐसा हो गया और जो भी मेरा बड़ा अच्छा कारनामा हो गया, तो इसमें तो मेरी मेहनत है, मेरी कोशिश है, इसमें किस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों सोचे क्यों? इसलिए कि कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, कोशिश ही इंसान के बस में है ना, नतीजा उसके बस में नहीं है। लाखों लोग कोशिश करते हैं मसलन पैसा बनाने की, क्या सब मिलियनेयर बन जाते? अब जो मिलियनेयर बन गया वो कहेगा मैंने तो बड़ी मेहनत की। मेहनत तो और भी बहुत लोग कर रहे हैं, उनका तो नहीं ये नतीजा निकला। इसका मतलब मेहनत आप कर सकते हैं, नतीजा आपके हाथ में नहीं, नतीजा अल्लाह ताला देने वाला है, इसलिए तारीफ भी उसकी है। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों पे मेहनत करते हैं, किसी का बच्चा बहुत लायक निकल आता है, किसी का नालायक हो जाता है। अब जिसका लायक निकल आया वो कहता है मैंने बड़ी मेहनत की, तो वो क्या दूसरे ने नहीं मेहनत की थी? उसने भी की है, मगर कोशिश सिर्फ इंसान के हाथ में है, नतीजा नहीं है। ये नतीजा जो कामयाबी की सूरत में आपको मिलता है, इसमें भी अपने आप को ना क्रेडिट दें कि मैं ही हूं जो इतनी अकलमंद थी, जो इतनी मेहनती थी। नहीं, अल्लाह ताला तेरा ही शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे से ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है या जो कुछ भी किसी ने मेरे साथ भला किया है, वो सारा का सारा इस काबिल है कि इसके ऊपर मैं अल्लाह ताला की ही हम्द बयान करूं, उसी का शुक्र अदा करूं और उसी की तारीफ करूं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा कलमा है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि किसी ने पीछे से कहा अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कि हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा ना, तो उसने कहा हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पूरी कर ली तो वो पूछा कि किसने ये कहा था? सहाबा डर गए, कोई बोल नहीं रहा था। फिर एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने ये कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हैरान था कि आसमान से 30 फरिश्ते लपक रहे हैं और हर कोई चाहता है कि मैं इस कलमे का अजर लिख लूं, मैं इस कलमे को लेकर, इन अल्फाज को लेकर अल्लाह ताला के सामने पेश करूं। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा ये कलमा होता है हम्द का अल्लाह ताला की। दूसरी एक और रिवायत में आता है कि एक शख्स ने कहा रब्बना लकल हम्द, रब्बना या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजही के वादी सुल्तानी का। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ने कहा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजही के वादी में सुल्तानी, तो फरिश्ते घबरा गए हम इसका अजर कैसे लिखें, क्या मतलब है इसका? ए अल्लाह, तेरी तारीफ, सारी तेरी तारीफ जैसे तेरे चेहरे के जलाल के लायक है और जैसे तेरी अजीम बादशाहत के लायक है, वो सारी तारीफ तेरे लिए। तो अब फरिश्ते सोच रहे हैं हम इसका हजर कैसे लिखें। आखिर उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज की कि या अल्लाह, तेरे एक बंदे ने एक ऐसा कलमा कहा है, हमें नहीं पता किस तरह लिखें इसका अजर। अल्लाह ताला ने बावजूद जानने के उनसे पूछा उसने क्या कहा। उन्होंने बयान किया कि उसने तो ये कलमा कहा। फरमाया, तुम ऐसे ही इसको लिख लो जब मैं उससे मुलाकात करूंगा, तो अपनी मुलाकात के वक्त इसका अजर उसको दूंगा। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा अजर है इसका। इसीलिए अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया, कि सबसे अफजल दुआ जो आप कह सकते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह है। इतनी बड़ी ये बात है कि इंसान जब अपनी जुबान से निकालता है तो कितने फरिश्ते उसकी ये बात को लेने के लिए आते हैं और कैसे उसका मीजान भर जाता है। और आपको पता है कि इस उम्मत का वसफ जो तौरात और इंजील में बयान किया गया है, तो काब अहबार की रिवायत से हमें पता चलता है कि इस उम्मत को उम्मते हम्मादून कहा गया है। यानी ये जो उम्मत है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उम्मते मुस्लिमा, उम्मते हम्माद होगी। क्या मतलब हम्मादून का मतलब क्या? बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की हम्द बयान करने वाले, यानी खुशी हो, गमी हो, परेशानी हो, या कोई खुशहाली हो, या नफा हो, या नुकसान हो, वो हर हाल में ही हम्द बयान करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलों में भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल फरमाते थे, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप सेहत वाले हैं, चाहे मुश्किलात में हैं, चाहे आसानियों में, ये इस उम्मत का वसफ है। और कयामत के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। और शिफात के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिफात करेंगे ना, कि अल्लाह ताला फैसला शुरू करे, तो अल्लाह ताला की ऐसी हम्द बयान करेंगे जो आपने फरमाया कि इससे पहले मुझे नहीं आती होगी, अल्लाह ताला उस वक्त ही मुझे सिखाएगा। तो ये कलमा बहुत बड़ा कलमा है हम्द का, और हम्द एक इबादत है। सबसे पहली इबादत जो हमें कुरान में बताई गई ना, वो हम्द है। आप देखिए ना, क्योंकि हम्द में अल्लाह ताला का शुक्र भी है, उसकी तारीफ भी है, ठीक है, और शुक्र से ही आगे इबादत मतलब वजूद में आती है। यानी शुक्र का नतीजा ही होता है इबादत, शुक्र का रिजल्ट होता है इबादत। कैसे? देखिए, जब इंसान किसी का भी एहसान उसके ऊपर हो तो क्या चाहता है? उसका शुक्र अदा करे। अब शुक्रिया, अब इंसानों का तो आप कैसे करते हैं, मतलब उनको थैंक यू बोल के आप उनको कुछ चीज तोहफा तहाइफ देते हैं, या आप किसी तरह चाहते हैं कि हम, मैं इस एहसान का कुछ बदला चुका हूं, ठीक है, आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी, जितनी भी आपकी तौफीक होती है, आप उस तरह बदला चुकाने की कोशिश करते हैं। अब इंसानों में तो ठीक है, ये हो जाए, लेकिन उस जात का जिसके एहसानात इतने ज्यादा हैं कि इंसान का रुआ रुआ उसके एहसानात गले दबा हुआ है, उसका बदला कैसे चुका सकते हैं? जब इंसान खुद को इससे कासिर समझता है कि कुछ भी मैं कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं उसका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता, तो वो क्या करता है फिर? यानी जब उसने देख लिया ना, मैं कोई बदला नहीं दे सकता, मैं इसकी कोई सेवा नहीं कर सकता, मैं उसको कोई खिदमत ऐसी नहीं कर सकता, वो हस्ती इतनी बुलंद है, मैं उसको किस तरह बदला दे सकता हूं उसके इस एहसानात का, तो फिर क्या होता है? ला महाला, नेचुरली वो बस झुक ही जाता है, गिर ही जाता है उसके आगे, उसकी हम्द के तराने पड़ता है। फिर वो कहता है, मैं कैसे करूं ये अल्लाह, मैं तेरा शुक्र नहीं अदा कर सकता, मैं तेरी कितनी इताअत भी कर लूं, कितनी फरमा बरदारी भी कर लूं, कितने सजदे भी कर लूं, अल्लाह मेरे पास कोई तरीका नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता मैं कैसे तेरे एहसानात के आगे कैसे बदला चुका सकता हूं, मैं तो कासिर हूं, मेरी जात इस चीज से कासिर है। तो अल्लाह ताला के आगे जो वो इबादत करता है ना, वो भी शुक्रिया की ही एक फॉर्म है, वो शुक्रिया अदा करना चाहता है ना, उसकी इबादत करके, उसके आगे झुक के, उसकी पूजा करके। ये है है जो हम्द है, और ये अलहम्दु आगे है लिल्ला, ये हम्द किसी और के लिए नहीं हो सकती, सिर्फ अल्लाह के लिए हो सकती। ली जो है ना, अब हमने पहले ली को देखेंगे, फिर हम उसके बाद अल्लाह के लफ्ज को देखेंगे। ली जो है इसको दो मानों में आप ले, देखिए लेटर्स के भी माने होते हैं अरबिक में, ली के दो माने, एक लाम, लामे इस्तेहकाक, हक जिससे निकला है, यानी लिल्ला लिए अल्लाह के, यानी वो उसका हक है, अल हम्द जो है ना वो उसका हक है, और इख्तिसास खास करने के, यानी खास उसी के लिए, यानी सिर्फ उसके लिए हैं तमाम तारीफें, तमाम हम्द, तमाम शुक्र और तमाम सना जो है खास उसके लिए ही है, यानी और किसी के लिए नहीं हो सकती। ली का ये दोनों माने, यानी वो इसका हकदार भी है, मुस्तहिक है कि उसी की जाए, क्योंकि वो सारी खूबियों का मालिक है ना। देखिए जब कोई भी नहीं था ना, जब एक जगह मैंने सवाल पूछा ये कि देखें अल्लाह ताला की इबादत क्यों की जानी चाहिए, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, तो हर एक ने डिफरेंट बातें की, किसी ने कहा कि वो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया इसलिए, किसी ने कहा जमीन आसमान बनाए इसलिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जैसे इसी तरह मैं आपसे पूछती हूँ अल्लाह ताला की हम्द क्यों नहीं चाहिए और किसी की क्यों नहीं, तो कोई कहेगा उसने हमें पैदा किया, ठीक है आपको पैदा किया, लेकिन मसलन आप पैदा ही ना होते तो क्या अल्लाह की हम्द नहीं होनी थी या उसकी इबादत नहीं होनी चाहिए थी। बात यह कि वो क्यों डिजर्व करता है कि उसकी इबादत ही की जाए। अगर ये पूछा जाए कि आप उसकी इबादत क्यों करें, चलो फिर तो आप कह सकते हैं कि मैं क्योंकि उसने मुझे पैदा किया, लेकिन उसकी इबादत क्यों की जाए या उसकी हम्द ही क्यों की जाए, क्योंकि वो इसके लायक है, ठीक है, वो खूबियों का मालिक है, चाहे कोई हम्द करे या ना करे, वो इसकी जात में इतनी खूबियां हैं और कमाल दर्जे की, मैंने आपको क्या बताया अभी, कमाल दर्जे की, इसीलिए तो हम्द है ना, परफेक्शन के लेवल की है। ये नहीं है कि एक तो होता है ना कि खूबी, मिसाल के तौर पे किसी की खूबी है कि वो रहम दिल है, अब रहम दिल तो है लेकिन इतनी भी ज्यादा रहम दिल नहीं कि उसको कोई थप्पड़ी मार दे तो वो रहम दिल हो, ठीक है एक एग्जाम्पल दे रही हूं। तो अब आप कहेंगे कि हाँ रहम दिल तो है, लेकिन ठीक है रहम बहुत अच्छी बात है, एक तो ये अच्छी खूबी उसके अंदर है, मगर इस पाए की नहीं है कि भाई इतने भी हद पे भी पहुंच जाए कि कोई उसके साथ मारे और कुछ भी करे और उसको भूखा प्यासा भी वो फिर भी रहम दिल हो, तो इस तरह की तो नहीं है, मतलब है तो सही मगर इस लेवल की नहीं। एक तो अल्लाह ताला तमाम खूबियों का मालिक है, क्या तमाम खूबियां जो है ना वो उसमें, नंबर टू कमाल दर्जे की परफेक्शन की है, जो मैंने अभी आपको सामने सारी मिसालें दी, कि ऐसे नहीं कि थोड़ी थोड़ी हो सारी, ऐसे नहीं कि कभी कभी हो सारी, वो हर वक्त उन खूबियों का मालिक है, वो हर वक्त इन सिफात का हामिल है, ये क्वालिटीज उसके अंदर हर वक्त मौजूद है, ठीक है। और अब इसके अंदर एक और सवाल पैदा होता है कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए मखसूस क्यों है, क्योंकि वो हर किस्म के कमाल का अकेला मुस्तहिक है, अकेला, जैसे ली का माना मैंने आपको बताया ना, खास उसके लिए, सारी तारीफ उसके लिए इसलिए कि वो सारा कमाल सिर्फ सिर्फ उसके अंदर है, जात के एतबार से भी, सिफात के एतबार से भी, और कोई भी अफआल है उसके तो उनके एतबार से भी कमाल है, उसके अंदर वो कंप्लीट है, उसके अंदर परफेक्शन है, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा है, ये नहीं कि कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, देखिए कुछ इंसानों में तो कोई खूबी होती भी है तो इनकम्प्लीट है ना, और फिर ये खूबियां उसकी अपनी है, किसी ने उसको दी नहीं हुई और ये हमेशा की है उसकी जात के साथ, ऐसी जैसे उसकी जात हमेशा से, इसी तरह ये खूबियां भी हमेशा की, ये बेसिक अकीदा है जिससे कुरान शुरू है। लेकिन एक आपको फिक्र वाली बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि इस उम्मत की अक्सरियत इसी अकीदे पे आके ही उनकी टांग टूट जाती, और वो इस अकीदे को ही नहीं सही समझ पाए जिससे कुरान शुरू हो रहा है, الحمد لله, अल्लाह के लिए हर किस्म की हम्द। वो इसी बात को नहीं समझ पाते, पहले जो दो अल्फाज है ना, इन्हीं से शिर्क की जड़ कट गई, कट गई शिर्क की जड़। किस तरह? अगर आप इसको समझे तो कट जाती है। जब आपने कह दिया अकेला, हर किस्म के कमाल खूबियों वाला वो अकेला है, लेकिन वॉट इफ कोई इन कमालात को या इन खूबियों में से किसी एक उसकी खूबी को, एक उसके अस्माए सिफात में से किसी एक नाम को लेकर, एक खूबी को लेकर वो किसी और को भी तकसीम कर दे, किसी और को भी दे दे उसमें से हिस्सा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वो रज़ाक है, रिस्क देने वाला। इसमें भी क्या होगा? परफेक्शन होगी, कंप्लीशन होगी, कमाल होगा। और वो इसमें कंप्लीटली ऐसा है कि उसको किसी और की जरूरत नहीं कि कोई और रोजी दे उसके सिवा, कि वो उसको कोई पार्टनर चाहिए, क्योंकि उसके नाउज़ुबिल्लाह उसके पास नहीं इतने रिसोर्सेस, या वो सारों को कैसे खिलाए, तो इसलिए उसको कोई मददगार चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, अकेला रिस्क देने वाला है। ये तो मानते हैं ना, अर्रज़ाक अल्लाह ताला है, अस्माए सिफात में पढ़ते हैं ना आप। अच्छा, अब मान तो लिया, लेकिन अब जब रोजी लेने की बारी आई, हमने यहां पे कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी हम्द अल्लाह के लिए है, और अल्लाह के इस नाम के अंदर उसकी सारी सिफात मौजूद है। ये जितने भी अस्माए हुस्ना है ना, वो सारे एक अल्लाह लफ्ज के अंदर वो सब शामिल है। ये पहले समझ लें बात। तो जब आपने कहा कि अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफें हैं, तो वो रज़ाक है, उसमें तमाम तारीफें, इसके लिए वो अल करीम है, वो अल हलीम है, अल मुजीब है, सारी आपने कह दी, अल मुजीब भी के दुआएं, दुआओं को सुनने वाला, कबूल करने वाला। लेकिन अब चलें रज़ाक को देखते हैं। अब आपने कहा कि रोजी तो अल्लाह ताला इसको देने में बिल्कुल कामिल है, लेकिन जब रोजी लेने का मामला आया तो आप कहीं जाके माथे टेक रहे हैं। अल्लाह माफ करे कि आप कहें कि दाता साहब हमें रोजी देते हैं, अगर ये नाराज हो गए तो हमारी रोजी बंद हो जाएगी। हजरत अली हजवेरी को दाता साहब बना लिया, किसी और को जाके अजमेर पे जाके आपने वहां पे मांगा कि इन्हीं की वजह से हमें मिलता है, हम तो खा रहे हैं क्योंकि हम दाता की नगरी में रहते हैं, तो इनसे ही मिल रहा है और यही हमें देते हैं। तो तमाम तारीफ, तमाम हम्द और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए तो ना ना हुआ। फिर तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, उतनी हम्द हजरत अली हजवेरी की हो गई जितना उन्होंने रिस्क दिया, और बाकी अल्लाह की हो गई। इसी तरह फलां नबी है या फलां वली है, वो भी कुछ गैब का इल्म जानते हैं, तो अल्लामुल गुयूब सिर्फ अल्लाह तो ना हुआ, फिर तो वो भी है। तो कुरान ने पहला जो अकीदा पेश किया ना, उसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। इसी तरह वो अकेला मुश्किल कुशा है, अकेला। आप कहते हैं अकेला मुश्किल कुशा है, सारी तारीफ इसीलिए क्योंकि वो अकेला ही काफी है मुश्किल कुशा। और अब क्या है, अब जहां पे लिखा है, मैंने खुद ये लिखा हुआ पढ़ा है, अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या सैयदा जहरा, अल मदद या पंचतन पाक, अल मदद या गौसे आजम। ये बहुत बरगजीदा हस्तियां हैं, मगर मदद के लिए अगर पुकारेंगे तो सिर्फ अल्लाह ताला को। किसी और को मुश्किल में पुकारा तो अल्लाह ताला के कमाल को तो तकसीम कर दिया, यानी अल्लाह ताला तो नाउज़ुबिल्लाह काफी नहीं था, वो परफेक्ट नहीं था मदद करने में, अब हमें किसी और की भी मदद की जरूरत हो गई। वो तो सुनता नहीं है, समी नहीं है उस तरह, नाउज़ुबिल्लाह हमें किसी और को सुनाने की जरूरत पड़ गई। वो तो अलमुजीब नहीं है पूरा का पूरा के दुआएं कबूल कर ले, अब हम किसी और के पास जाके दुआएं करते हैं ताकि वो हमारी मदद करें। तो जब जब आप उसकी अस्माउ सिफात में से किसी भी इसम को लेकर तकसीम कर देंगे, तो तो आप उसकी हम्द को भी तकसीम कर देंगे, फिर मत कहें अलहम्द, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। जब आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था तो हम तो सारी की सारी आपने सिर्फ अल्लाह के लिए दे दी कि सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, फिर किसी और को उसमें कैसे शरीक कर सकते हैं? जब जब आप दूसरी ये अल्लाह ताला के आसमान में किसी को भी इस चीज के लिए समझेंगे कि ये भी कर सकता है और ये भी ये कर सकता है और वो भी वो कर सकता है, और तकसीम कर देंगे उसके अस्माए हुस्ना में से किसी को, तो आपने तारीफ भी उसकी उतनी ही कर ली। तो हम्द अकेले अल्लाह के लिए, जबकि जब आपने किसी और को भी इस ये अस्माए हुस्ना में से कोई भी एक इसम अल्लाह ताला की किसी और के लिए भी उसका हिस्सा करके दे दिया, तो हम्द अकेले तो अल्लाह के लिए नहीं रह गई ना। तो इस अकीदे को समझें कि तमाम हम्द अकेले अल्लाह के लिए, क्यों? इसलिए कि वो ही अपनी जात में, अपने सिफात में और तमाम अफआल में अकेला है और बाकमाल है, परफेक्ट है, परफेक्ट। जब भी आप उसके साथ किसी को लेकर खड़ा कर देंगे तो हम्द भी आपको उसको भी देनी पड़ेगी, उसको भी उसकी भी हम्द करनी पड़ेगी, और हम्द हो जाएगी उसकी जब आपने ये किया कि उसको भी लाके खड़ा कर दिया, जब आपने उसको भी समझ लिया कि ये भी है जिसके पास इतनी ताकत है, जिसके पास इतनी कुव्वत है, ये भी फला फला मेरे काम कर सकता है, ये सब चीजें आपने उसके लिए भी जब रख दी तो आपने हम्द को तकसीम कर दिया। ये बात समझ आ गई? तो हम्द को समझें कि पहले अलहम्द क्या है, और उसके बाद आप ये भी समझें कि फिर ये कलमा शिर्क की जड़ काट देने वाला कलमा है, जब सारी तारीफ उसी की है तो फिर किसी और के लिए कोई भी फेल समझना, कोई भी चीज समझना किसी और के लिए, चाहे वो कितना ही आपको के लिए कुछ भी कर रहा हो, कोई इंसानों में से कोई आपके लिए कुछ खिदमत कर रहा है, कोई आपका भला कर रहा है, या कोई भी और किसी रिश्ते में आपको कोई मोहब्बत, कोई शफकत, कोई मदद मिल रही है, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। और इसके अलावा मा फौकुल फितरत, अगर आप किसी को सुपर नेचुरली किसी को समझते हैं कि कोई दुनिया से जा चुका है फिर भी वो हमारी मदद कर रहा है, कोई दरगाह है वहां पर भी हमारी, वहां से भी हमारी मदद होती है, कोई किस तरह से बैठा बैठा कहीं बैठा हुआ है लेकिन वो वहां से हमारे काम आ जाता है और हमारे काम कर जाता है, ये सारी चीजें हमें ये समझना है कि ये सब अल्लाह ताला की तारीफ को तकसीम करना है, और ये फिर यहीं से फिर शिर्क आ जाता है। याद रखे, शिर्क और शुक्र के अंदर ना थोड़ा सा ही फर्क है, शीन रा काफ और शीन काफ रा। जहां पे शुक्र होगा शिर्क खत्म हो जाएगा, जहां पे शिर्क होगा वहां पे शुक्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि शुक्र तो अल्लाह का ही है, शुक्र अल्लाह का करेंगे तो शिर्क खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, और शिर्क कर लिया तो शुक्र नहीं रहेगा अल्लाह का। इसलिए इस चीज को समझें कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम क्या कह रहे हैं। दूसरे, अब अल्लाह के नाम को देखते हैं। देखिए, ये नाम वो है जिससे अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया। सबसे पहले आप किसी से भी बात करने लगते हैं, किसी का भी कलाम है या किसी से मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले आप उसका नाम पूछते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन अपने नाम अल्लाह से कराया। ये नाम है उस जात का जो हर जमाने में, हर दौर में मौजूद है, उसकी कोई इब्तदा नहीं और कोई इंतहा नहीं, हमेशा से था, हमेशा होगा, और अपनी सारी सिफात के साथ होगा।
ये नहीं कि बाद में उसको कोई खूबी मिली, बाद में उसको कोई उसको कोई कमाल मिला, नहीं, हमेशा से जब से उसकी जात है तब से उसके कमालात भी हैं, उसके उसके ये अफाल भी हैं, उसकी ये सिफात भी हैं, उसकी ये खूबियां भी हैं। अब जो अल्लाह ताला का ये नाम है, इस नाम का मीनिंग क्या है, अल्लाह, इसको आप देखते हैं। बाज कहते हैं कि ये डिराइव्ड है, और बाज कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का इसमें अलम है, जामित है, बस अल्लाह ये नाम है। जैसे किसी का भी नाम होता है, मसलन किसी का नाम, मिसाल के तौर पे ऐसा कोई नाम हो किसी का जो कि किसी से डिराइव्ड नहीं है, बस वो एक लफ्ज है। माना जैसे ये एक, अब एक ऐसे किसी ने नाम कहा कि ये इसका नाम है, वो किसी से निकला ही नहीं है। इसके बरक्स अगर किसी का नाम है साजिद, तो साजिद सीन जीम दाल से निकला है, और सजदा करने वाला इसका मतलब है। तो बाज ने कहा अल्लाह जो नाम है ये ऐसा नाम है कि इसमें आलम है, ये नहीं कि किसी से निकला है, डिराइव नहीं हुआ। और जो इमाम नहव, जो ग्रामर के बड़े इमाम है, सीबवे उनका नाम है, वो कहते हैं ये नामों में सबसे बड़ा नाम है, आरफुल मारिफ, कोई दुनिया की ताकत इसका तर्जुमा नहीं कर सकती और तर्जुमा करने की ताकत ही नहीं रखती। इसीलिए आप देखें सुभान अल्लाह, बगदादी की तफसीर है अल्लुबाब, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जब सीबवे का इंतकाल हुआ, ये जो मैंने आपको बताया इमाम है नहव के, ग्रामर के बहुत बड़े इमाम है, तो किसी ने ख्वाब में उनको देखा तो पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सलूक किया, तो कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे खैर कसीर दे दी, खैर के खजाने दे दिए मेरे इस एक जुमले की वजह से जो मैंने अल्लाह ताला की शान में कहा था कि उसका नाम आरफुल मारिफ है, कि अल्लाह ताला ने इसको इतना पसंद किया इस लफ्ज को कि इसको कबूल करके मुझे खैर कसीर दे दे। तो आरफुल मारिफ का मतलब क्या, तमाम नामों में सबसे बड़ा नाम, तमाम आलाम में सबसे बड़ा आलम, ऐसा मालूम होता है ना। तो एक तो राय ये है कि अल्लाह ताला का ये नाम जामिद है, बस इसी तरह है। दूसरा कॉल है कि ये डिराइव्ड है। अब जब डिराइव कहते हैं आप, तो फिर किससे डिराइव हुआ, तो बाज ने कहा असल में अल इलाह था, अल इलाह, तो बीच वाला हमजा गिर गया तो अल्लाह हो गया, और अल इलाह का मतलब क्या, इलाह कौन होता है, माबूद, जिसकी इबादत की जाए, तो जो इबादत के लायक, यानी तो यानी वो माबूद है। अब अगर किसी ने उसके सिवा किसी की इबादत की तो उसने तो फिर इबादत की असलियत को ही नहीं पाया, इसलिए कि असल इबादत के लायक तो वही है, फिर उसने तो इबादत की ही नहीं जिसने किसी और की कर ली, फिर क्योंकि अल इलाह तो वही है। दूसरा कहते हैं कि अल्लाह का जो लफ्ज है, तो ये वो कहते हैं बाज ने कहा कि ये डिराइव्ड है अली है या लहू से, और इसका माना क्या होता है, अलीहा का मतलब हैरान होना, मुतहैयर हो जाना, यानी जिसको कहते हैं ना दंग रह जाना। क्या मतलब हुआ कि सारी मखलूक दंग रह गई है, दंग है इस चीज के ऊपर, हैरान और परेशान है अल्लाह ताला की वो जात को पहचानने से कासिर है, जानने से कासिर है, मुतहय्यर है, मुमकिन ही नहीं है उनके लिए कि वो उसके बारे में जाने। अल्लाह ताला की जात ऐसी है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की ना तो सिफात को इंसान जान सकता है, ना उसकी जात को पूरी तरह जान सकता है, इसलिए तो इंसान बस एक जगह पे जाके, बस थोड़ा सा उसके पास इल्म है, एक जगह पे जाके उसका इल्म खत्म हो जाता है, वो उससे आगे वो नहीं जान पाता कि अल्लाह ताला कैसा अलीम है। इतनी बात सोच के अल्लाह इस तेरी कायनात इतनी बड़ी है, हर हर जर्रे का इल्म होना, मतलब एस्टोनिश्ड है, इन ऑ है इंसान, अमेज्ड है कि उसकी जाते बाबरकत में उसकी कैसे मतलब सुभान अल्लाह, कैसे उसकी औसाफ हैं कि इंसान सोच ही नहीं सकता, उसकी अकल में समझ में आ ही नहीं सकते। तो उस तरह से देखा जाए तो वाकई उसकी जात ऐसी है कि इंसान हैरान और परेशान रह जाता है, वो जान ही नहीं सकता उसको, उसकी किसी सिफत को। इसीलिए बहुत ज्यादा हम उसकी सिफात को जो है ना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ना ही कैफियत बयान नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि वो हो ही नहीं सकती। अब वो मुस्तवी अल अर्श है, अर्श पे मुस्तवी है, तो वो इंसान कैसे इसको बयान करे, क्योंकि वो हम ये नहीं कह सकते कि वो बैठा हुआ अर्श पे, नहीं, तो इसकी कैफियत हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह हू अकबर, कि इंसान ओवरवेल्म हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है कि वो जात कैसी है। फिर अलीहा कमाना, ये भी होता है कि किसी के लिए डेस्परेट होना, किसी के लिए यानी किसी की तरफ भागना, किसी की तरफ डेस्परेट होके भागना, दौड़ना, जब इंसान को कोई जरूरत हो, उसको उसके सिवा कोई ना नजर आए, उसको लगे बस यही है, इसी के पास जाऊंगा तो मुझे पनाह मिलेगी, वो जात, उसके लिए भी ये लफ्ज आता है जिससे अल्लाह बना है। यानी जैसे अरब कहा करते थे, कोई बच्चा अपनी माँ से जुदा हो जाता था ना, खास तौर पे गाय के बच्चे के लिए कहते थे कि वो अपनी माँ से जुदा हुआ, उसको कहीं बांधा हुआ है, तो जब उसको खोलते तो कैसे लपकता है अपनी माँ की तरफ, तो उसको वो कहते थे। तो यहां पर हमें पता चला कि यानी जिसकी हर एक को मोहताजी है, वो ऐसी जात, अल्लाह वो जात है जिसका हर कोई मोहताज है, अपनी मुश्किल में, अपनी हाजत में, अपनी जरूरियात में, अपनी जिंदगी में, जिसकी जरूरत हर एक को है, सब उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, सब उसी से जजा फजा करते हैं, सबकी हाजतें उसी से पूरी होती हैं, दौड़ते उसकी तरफ। और लाह यालूहू से अगर हम कहें कि अल्लाह बना, तो वो जात जो छुपी हुई है, कोई भी उसको देख नहीं सकता, देखें बाकी दुनिया जिसको भी पूछती है उनको देखा जा सकता है, और अल्लाह ताला की जात वो जो महजूब है, छुपी हुई है। बास कहते हैं लाह यलीहू से बुलंद हो जाना, तो वो जात है जो बुलंद है। इस लफ्ज से अगर हम कहें कि अल्लाह का वर्ड निकला, इसी तरह वलहा, वलहा से अगर हम देखें तो वलहा कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना वालेहाना मोहब्बत, वालेहाना इश्क, तो वलहा बहुत ज्यादा शदीद मोहब्बत को कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो सकती, यानी इतनी मोहब्बत। मोहब्बत के लिए भी बहुत सारे वर्ड हैं, हुब भी है मोहब्बत के लिए वर्ड, ठीक है, लेकिन और भी अल्फाज हैं, लेकिन ये वो मोहब्बत है कि जो इतनी इंटेंस होती है कि इंसान को ये भी याद ना रहे कि उसको भूख लगी, ये भी याद ना रहे उसको प्यास लगी, ये भी याद ना रहे उसको कोई तकलीफ हो रही, तकलीफ का एहसास भी खत्म हो जाए। ये वो मोहब्बत है कि जो इंसान को बेचैन करके रख दे कि वो उसके बगैर उसको चैन ना आए, जो उसका महबूब है, फिर इंसान को किसी और की परवाह ना रहे, जब किसी के लिए वो मोहब्बत ही सब सब चीजों से ऊपर हो जाए, और वो मोहब्बत ऐसी हो कि जिंदगी की हर खला को पुर कर देती हो, उसके बाद कुछ और नहीं चाहिए हो, उससे ये कितना प्यारा मीनिंग बनता है ना, कि अल्लाह वो जात है जिससे इतनी मोहब्बत की जाए। वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं, और वाकई अल्लाह वो जात है जिससे इंसान शदीद मोहब्बत करे, वालेहाना मोहब्बत करे, और मोहब्बत में उसकी तरफ बढ़े कि हर मोहब्बत से ऊपर उसकी मोहब्बत हो। तो ये सब माने आ गए, यानी अल्लाह ताला ने जब अपना तारुफ करवाया ना अल्लाह से, तो उसका माना है कि वो माबूद जिसकी तरफ सब दौड़ते हैं, बेचैन होके दौड़ते हैं, जिसके लिए शदीद मोहब्बत हो, जिस जो बुलंद जात हो। और अल्लाह का एक माना ये भी होता है सकना, पुरसकून हो जाना, जिसके पास आके इंसान पुरसकून हो जाए, जिसके जिसकी कुर्बत सकून दे दे, जिसकी याद सकून दे दे, तो वो जिससे सुकून हासिल होता हो। तो कितने सारे आपको माने इस लफ्ज अल्लाह में, जो अल्लाह ताला का नाम है, इसके माने कितने प्यारे हैं। यानी आप देख लें, मोहब्बत भी इसमें आ गई, और शदीद मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जिसके बगैर चैन ना आए। यानी जो अल्लाह ताला से कट जाता है ना, उसको कहीं चैन नहीं आएगा, वो कोई ऐसी मोहब्बत नहीं उसको मिल सकेगी जो उसको सुकून दे सके, क्योंकि वो उसकी ज़ात में ही सुकून है, उसके करीब आने में ही सुकून है। वो ही है जो बुलंद ज़ात है, वो ही छुपी हुई ज़ात है, लेकिन ऐसी ज़ात है कि जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे को माँ से दूर कर दे तो वो कैसे रोता है, बिलखता है, माँ की जुदाई में उसको तकलीफ होती है, माँ के बगैर रह नहीं सकता। जब माँ मिल जाती तो कैसे वालिहाना तौर पे उसकी तरफ दौड़ता है। तो वलीहा का मतलब यही है कि किसी की मोहब्बत में इतनी इतने हद तक होना कि इंसान उसके बगैर रह ना सके, उससे इतनी अटैचमेंट होना कि उससे जुदाई बर्दाश्त ना हो सके। उसकी जुदाई में जो रोया जाता है, जो बिलबिलाया जाता है, जो उसकी जुदाई के अंदर इंसान तकलीफ महसूस करता है, उसकी मोहब्बत में जिसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं हो सकता, वो अल्लाह है। उसके बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो अल्लाह है, क्योंकि उसके नाम में ये मतलब है। सुभान अल्लाह, कहीं और कोई नाम इसका बदल हो सकता है क्या? जिस नाम में ही कितनी खूबी है। सारी बातों को इनको जमा कर दिया जाए तो अल्लाह वो जात है जो ही इबादत के लायक है, जिससे दिल शदीद मोहब्बत करते हैं और दिल उसे अटैच दें, और अकल दंग रह गई है उसके कमाल, उसकी सिफात, उसकी जात को समझ ही नहीं सकती, और जो बुलंद है। हाँ देखें, आप जब ये माने सोचते हैं तो दिल मोहब्बत से भर जाता है ना, कि वो जात जिसके लिए दिल तड़प जाए, जिसकी जुदाई बर्दाश्त ना हो दिल को, फिर कैसे इंसान उससे दूर रह सकता है। ये वो नाम है कि होंठों को हरकत देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप होंठ बंद भी हो ना, जुबान हिलाना ही काफी है, और जुबान भी ऊपर तालू पे जाके लगती है। इतना बाबरकत नाम है, इसको जुबान को भी ऊपर उठाना पड़ता है तब ये नाम अदा होता है। इस नाम से अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया। ये वो नाम है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया अल्हम्दुलिर्रहमान, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल वदूद, नहीं। इसलिए क्योंकि अगर रहमान कहा जाता तो बाकी नाम रह जाते, अगर करीम कहा जाता तो बाकी नाम रह जाते, अगर वदूद कहा जाता तो बाकी रह लगे, वो भी बहुत प्यारे प्यारे नाम है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक सिफाती नाम भी लिया जाता तो बाकी नाम रह जाने थे। तो अल्लाह ताला ने अपना नाम, जो जाती नाम है अल्लाह, वो यहां पे चुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि सारे नाम इसमें आ जाए। अब जैसे हम मसलन आपको एक मिसाल से बताती हूं, आप कहते हैं कि इनका नाम आयशा है, ये नेक हैं, ये सालेहा हैं, ये सच्ची हैं, ये बहुत इबादत गुजार हैं, बहुत रोजे रखती हैं। तो देखें, अब जब आयशा कह दिया तो सारी सिफात उसके अंदर आ गई, सारी बातें उसके अंदर आ गई। अब अलग अलग बातें जो हैं, एक भी बात ली जाती, मसलन कहा जाता है ये रोजे रखने वाली है तो बाकी नमाजों वाली रह जाती, सच्चाई वाली बात रह जाती, नेकी वाली बात रह जाती। लेकिन जब आपने कह दिया आयशा तो उसके अंदर सारी बातें आ गई, क्योंकि सारी सिफात हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का नाम है ये, और सारी सिफात इसके अंदर शामिल है। तो अल्लाह ताला का ये जाती नाम है, बाकी सिफाती नाम है, ये नाम किसी और का नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जब कोई कहता है अल्लाह तो उसमें उसने सब कुछ कह दिया कि वो रहमान भी है, रहीम भी है, मलिक भी है, कुद्दूस भी है, सलाम भी है, मोमिन भी है, मुहर, सारी सिफात आ गई सिर्फ एक नाम में।
इसी वजह से आप देखें कि जब मसनून दुआएं आप पढ़ते हैं तो अल्लाहुम्मा से स्टार्ट होती है। अल्लाहुम्मा का मतलब क्या? या अल्लाह, अल्लाहुम्मा, या की जगह मीम आ गई एंड में, तो अल्लाहुम्मा से होती है शुरू सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ और सारा शुक्र अल्लाह के लिए, जिसमें ये सारी सिफात है जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते। अल्लाह ताला के अस्मा हम बाज़ तो जानते हैं, बाज़ का हमें नहीं पता है, वो भी अल्लाह के नाम है। और उसके नाम कोई ऐसे नहीं है जैसे हम दुनिया में है ना, कोई चाहे एक रोज़ा भी ना रखती हो उसका नाम साइमा रोज़ा रखने वाली है, वो चाहे रोज़े रखते भी ना हो, तो ऐसे नहीं। अल्लाह ताला की जो सिफात है वो सिफात उसमें मौजूद है। अगर वो रहमान है तो ऐसे ही नहीं नाम रखा हुआ, ये सिफत उसमें मौजूद है। अगर वो असबूर है तो ये सिफत उसमें मौजूद है, ठीक है? तो तमाम तारीफ उसके लिए है। अब चाहे कोई करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी का मोहताज नहीं है कि कोई तारीफ करेगा, और ना ही यहाँ पे लिखा गया अहमदुल्ला कि अल्लाह की हमद करो, इसलिए कि अगर हुक्म दिया जाता तो कोई करता कोई नहीं करता, पर तारीफ है ही उसकी। वो किसी के करने से तारीफ के लायक नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे, अब ये देखिए मिसालें मैं वैसे ही आपको दे रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला की किसी भी बात के साथ ये मिसालें तो मैच नहीं होती। सिर्फ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक बहुत हसीन औरत है, अब जरूरी नहीं उसको अवॉर्ड मिले हसीना आलम का, उसका हुसन तो उसके साथ ही लगा हुआ है ना, वो चाहे कोई अवॉर्ड दे या ना दे वो हसीन तो है, ठीक है? अब वो कोई दुनिया में वो कोई कंपटीशन के लिए जाती है नहीं जाती, वो कोई उसमें हिस्सा लेती है नहीं लेती, कोई उसको स्टेज पे बुला के अवार्ड देते हैं नहीं देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला वो महमूद है, वो हम्द के लायक है, वो तारीफ वाला है, जिसकी तारीफ की जाए, वो जात है जिसकी कोई खुद कोई तारीफ नहीं भी करे वो तारीफ के ही लायक है। वो अलहमीद है, उसकी तारीफ हो रही है क्योंकि उसके अंदर खूबियां हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह को समझना जरूरी है। और अब हमने ये समझ लिया कि अल्लाह का लफ्ज क्यों आया यहां पर, तो स्टार्ट ही हमारी सूरह फातिहा ने, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक दुआ है सूरह फातिहा, लेकिन दुआ की शुरुआत उस हस्ती की तारीफ और शुक्र से की जा रही है जिससे हमने दुआ मांगनी है अभी। तो इससे हमें क्या तालीम मिली कि दुआ जब मांगो तो ऐसे नहीं कि सीधे सीधे मुझे ये दे दे ये दे दे, बल्कि अल्लाह ताला की तारीफ, उसकी खूबियां बयान करो, उसके एहसानात को मानो, उसका मर्तबा, उसका इतराफ करो, ये बात बयान करो। और जितनी ज्यादा आप अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी खूबियां और उसके एहसानात और उसका मर्तबा और उसके मकाम और सारी चीजों को बयान करेंगे, उतनी आपकी दुआ की कबूलियत का ज्यादा चांस है। तो अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह के लिए तमाम हम्द है, अल्लाह ही के लिए, आप यहां पे लिख लें अल्लाह ही के लिए, क्योंकि ली का मैंने आपको माना बताया। अलहम्द का क्या? तमाम तारीफ। और तमाम का अब आपको समझ आ गया कहां से आया, लिल्लाह अल्लाह ही के लिए कहां से आया। और अब है रब। अब देखें, अब ये रब, ये पहली सिफत है यहां पर जो अल्लाह ताला ने अपने नाम के बाद अपनी बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने नाम के बाद ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला वो है जो कि बहुत रहम करने वाला है, बहुत रिस्क देने वाला है, बल्कि जो रब है, यानी अब अल्लाह ताला की सिफात आ रही हैं आगे कि अल्लाह कौन। अब इंसान कहता है ना तमाम हम्द अल्लाह ही के लिए है, तो अब जहन में आएगा कौन है अल्लाह। जो पहला तारुफ अल्लाह ताला ने अपना कराया है कि उसकी पहचान किससे उसको पहचानोगे,
वो रब्बुल आलमीन है, दूसरा वो अर रहमान है, तीसरा वो अर रहीम है, चौथा वो मालिक यौमिद्दीन है। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने चार अपनी सिफात के साथ अपनी तारीफ यहाँ पे बयान फरमाई है कि अल्लाह को अगर पहचानना है वो कौन है। अल्लाह एक नाम से नहीं समझ आती, तुम ये देखो वो अल्लाह वो है जो रब है। रब का लफ्ज अब हम इसको दो तीन तरीके से देखेंगे। पहली तो बात ये कि अल्लाह ताला ने यहां पे भी अपनी पहचान रब से कराई, और इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी खलक, जो पहली वही आई थी उसमें भी अल्लाह ताला ने अपनी पहचान किससे कराई, रब होने से अपने, कि वो रब है। तो इसका मतलब रब कोई बहुत अहम ही बात है ना, जो अल्लाह ताला ने कुरान शुरू होने पे भी अपना तारुफ इसी से कराया, और वो भी कि सारे जहानों का रब है। अल आलमीन, अल में भी क्या है, तमाम, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में था तमाम तारीफ या तमाम हम्द या तमाम तारीफ और शुक्र, इस तरह अल आलमीन तमाम जहान, आलमीन भी हो सकता था लेकिन अल आलमीन का मतलब क्या, तमाम जहानों का। ठीक है, अब देखें ये जो नाम है ना अल्लाह ताला का, इसमें बहुत सारे माने हैं, और याद रखें कि ये जो सारे अल्फाज हैं ये डिराइव्ड होते हैं किसी रूट से। अब इसका रूट अगर तो आप रा बा वाओ कहेंगे तो फिर तो रू इस रूट से बनता है केयर टेकर, कि वो केयर टेकर है इंसान का, यानी जो के नशो नुमा करता है, स्टेप बाय स्टेप किसी को परवान चढ़ाना, ये मुरब्बी का काम होता है। तो रा बा वाओ से अगर रब का लफ्ज लेते हैं तो ये माना बनता है, लेकिन अगर आप रा बा बा से रब का माना निकालते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये इसके हरूफ असली हैं, हरूफ असली वो होते हैं जो उस वर्ड के अंदर लाजमी होते हैं, वो नहीं इधर उधर हिलेंगे, तो फिर आप पांच माने लिख लें, पांच माने इसके अंदर हैं इस वर्ड रब में, अल मालिक, अस्सैयद, अल मुनइम, अल मुरब्बी, अल कय्यम। अभी मैंने आपको पहले थोड़ी देर अल मुरब्बी का बताया कि नशो नुमा देने वाला केयर टेकर, वो इसके अंदर ही फिर माना आ जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं, अल मालिक यानी वो मालिक है, ओन करता है, ओनर है, ठीक है, ओनर है, और हमेशा से वही मालिक था, उसने किसी से लिया नहीं किसी को, वो ही मालिक है और वो ही मालिक रहेगा सारे जहानों का, सिर्फ अपनी जात को ना समझे, सारे जहानों का। और सिर्फ मालिक ही नहीं है, वो असैयद भी है। सैयद का मतलब माना क्या, सैयद का माना ये होता है कि जब कोई किसी के ऊपर इख्तियार रखता है, अथॉरिटी रखता है, तो उसको कहते हैं असैयद, हुक्मरान के लिए भी आता है। तो यानी वो सिर्फ मालिक नहीं है बल्कि पूरी मुकम्मल अथॉरिटी भी उसके हाथ में है। अब देखिए ऐसा भी होता है कभी कि इंसान किसी चीज का मालिक तो होता है लेकिन उसको पूरी अथॉरिटी उस पर नहीं हासिल होती। मिसाल के तौर पे आप एक जगह जमीन लेते हैं, आप वहां पे सोचते हैं अब मैं इसकी मालिक हूं, लेकिन मालिक है लेकिन फिर भी आप पूरी अथॉरिटी नहीं रखते, इसलिए क्योंकि आप वो कमर्शियल जमीन है, आप वहां पे घर नहीं बना सकते, आप वहां पे कूड़ा करकट नहीं फेंक सकते, आपको जल्दी वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, आपको वो अबाइड बाय करने थे, चाहे अब आपकी जमीन है लेकिन फिर भी आप उसके अंदर बंधे ही हुए हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला मालिक है, तो एब्सोल्यूट ओनर है, मुकम्मल तौर पे मालिक है, और वो सैयद है यानी पूरी इख्तियार रखता है, पूरा पूरा उस वो इंचार्ज है हर चीज का, जो चाहे करे, कोई उसको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करने किसी के, पूरी अथॉरिटी है, उसको कोई पूछ नहीं सकता कि ये क्यों किया और वो क्यों किया, पूरा पूरा इख्तियार है उसको। अब सोच ले रब का माना, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कोई शिकायत करे ये क्यों किया और वो क्यों किया मेरे साथ, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं वो रब है, आपने उसको रब माना, कुरान शुरू ही हो रहा है इस चीज से, और फिर उसके बाद आपको शिकायतें होती हैं उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। फिर तीसरा अल मुरब्बी, मुरब्बी का माना क्या, तरबियत करने वाला, निचोड़ करने वाला, नर्चर करने वाला, इतना स्टेप बाय स्टेप निगहदाश्त करता है, ख्याल करता है, केयर करता है, जैसे एक बीज डाले और किसान उसको पानी देता है और उसके बाद उगता है तो फिर उसकी नशोनुमा करता है ताकि वो तनावर दरख्त बन जाए। तरबियत का माना भी इसी के अंदर है। तो यानी वो बना के छोड़ नहीं देता इंसान को, तरबियत भी करता है उसकी, परवान भी चढ़ाता है उसको, केयर भी करता है उसकी। जैसे अब देखें, हम बाज दफा हम किसी चीज के मालिक होते हैं, हम उस पर इख्तियार भी रखते हैं लेकिन हम उसकी केयर नहीं करते। अब एक वैसे एग्जांपल दे देती हूँ कि मसलन आपका एक गार्डन है, आपका गार्डन है, आप उसके अंदर इख्तियार भी रखते हैं, मालिक भी आप हैं, लेकिन अब आपने छोड़ दिया हुआ उसको, तो आप उसकी केयर ही नहीं कर रहे। वो पौधे कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है, उनका बुरा हाल हुआ हुआ है, सारी जगह वीड्स उगे हुए हैं और आपने उसकी केयर ही नहीं की। तो मुरब्बी है वो, केयर टेकर है। अच्छा, इससे पहले मैं भूल गई, मुनाइम भी था। मुनाइम नेमते देने वाला, तोहफे देने वाला, मुनाइम नेमत से ना। तो देखिए मुनाइम भी वो कैसा है कि ये नहीं कि इंसान डिजर्व करता है तो उसको देता है, वो रब्बल आलमीन है। क्या रब्बल मुस्लिमीन लिखा हुआ है, रब्बल मुमिनीन लिखा हुआ है? नहीं, आलमीन, आलमों में क्या है, काफिर भी हैं, मोमिन भी हैं, कोई भी जो भी नेमतें जिसको मिल रही हैं वो सरासर उसका इनाम ही है, उसका फजल ही है। वरना ऐसे नहीं कि सब डिजर्व करते हैं, उनको ये मिलनी ही चाहिए। अब किसी के पास आंखें नहीं हो तो लोग दूसरे कहते हैं इसको अल्लाह ताला ने ब्लाइंड क्यों पैदा किया, उसके ऊपर गिले शिकवे शुरू कर देते। तो नेमत कोई भी मिलना ना हमारी कोई हक नहीं था कि हम डिजर्व करते हैं कि हमें ये सब कुछ मिलना चाहिए, और अगर कोई भी कहीं कमी हो गई तो हम फौरन शिकायत लेकर खड़े हो जाए। नहीं, ये तो उसका फजल है, उसे दे दी, नहीं भी दी तो कोई कोई कह नहीं सकता। तो वो जो नेमते देता है और अता करने वाला नेमते, और वो उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जरूर अता करे, तो वो मुनाइम है। और आखिरी अलकय्यम, कायम रखने वाला, जिसको कायम कहते हैं ना, चलाने वाला, सारे कारखाना है कुदरत को वो चला रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि उसने पैदा तो कर दिया, लेकिन कोई भी चीज पैदा कर दी उसका मालिक भी वो है, जरूरी नहीं कोई उसको चलाए भी। आप किसी का कोई कारखाना है उसको वो छोड़ के बैठ जाए, वो तो मशीनरी सब लगी हुई है, चला ही नहीं रहा, मेंटेन ही नहीं करता उसको। कोई आपकी गाड़ी है, आप उसके मालिक भी हैं, आपके पास इख्तियार भी है, लेकिन आप उसकी यानी उसकी मेंटेनेंस करते ही नहीं है तो खराब हो जाएगी। वो सारे जहानों को मेंटेन करता है, यानी पैदा तो किया है उसने, लेकिन ये नहीं है कि पैदा करके छोड़ दिए। जैसे हिंदुओं का अकीदा है कि वो उसने राम ने पैदा कर के नाउज बिल्ला, और उसने बस छोड़ दिया, अब उसको परवाह नहीं है, कोई जो मर्जी होता रहे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। वो मेंटेन भी कर रहा है उसको, यानी हर आन जो भी कायम है ना, जिसकी भी लाइफ कायम है, सस्टेन करना उनको, वो अल्लाह ताला की तरफ से। यानी आप देखें, अब इंसान है, इंसान को एक पैदा होना ही बात नहीं है, सारी जिंदगी उसको जरूरत है कि कोई उसको कायम रखे, उसको चलाए। चलाने से मतलब क्या है, उसकी जिंदगी को चलता रखे, जरूरत है ना, यानी सांस भी चल रही हो, उसका दिल भी धड़क रहा हो, उसका मैदा भी काम कर रहा हो, और उसकी ऑक्सीजन का इंतजाम भी हो हवा के अंदर, ना सिर्फ कि उसके लंग्स काम कर रहे हो बल्कि उसकी हवा का भी बाहर भी इंतजाम हो, उसको प्रोवाइड करना, उसके लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उसको उसके सर्वाइवल के लिए, राइट टेम्परेचर होना, खाना पीना होना, पानी होना, हवा का सही प्रेशर होना, ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करना ताकि उसकी हस्ती कायम रह सके, ये अलकय्यम का काम है। ये वो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं कर रहा, सारे जहानों को कायम रखे हुए है, उनकी जिंदगी चला रहा है, यानी जिंदगी को चलाने वाला। वरना अगर वो ना चलाए तो जिंदगी नहीं चल सकती किसी की भी, कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता। इसे पता चला दिल धड़कता है तो उसके इज़न से। उसे ऐसे नहीं कि उसने पहले दिन धड़का दिया था उसके बाद उसने छोड़ दिया अब खुद ही धड़कता रहे, नहीं हर दफा उसकी इजाजत से धड़क रहा है। जिस दिन उसकी इजाजत ना हुई तो धड़कना बंद हो जाएगा, चाहे कोई इंसान कितना ही हेल्दी क्यों ना अपने आप को समझे, ऑक्सीजन चाहे कितनी ही हवा में क्यों ना हो, एक सांस से दूसरी सांस का आना उसकी इज्जत से है। जिस दिन वो इज्जत ना देगा सांस रुक जाएगी। तो वो चला रहा है ना इंसान की लाइफ को, उसकी लाइफ को सस्टेन किए हुए है ना, ये उसका ही काम है, ये उसके रब होने के अंदर ये माना शामिल है। तो अब समझ आ गई ना कि वो अल मालिक भी है, एब्सोल्यूट मालिक है, ओनर है। यानी अब किसी चीज का कोई ओनर हो ना तो कोई और फिर दखल नहीं दे सकता। मसलन है कि आप कहती हैं मैं अपने घर की ओनर, अब कोई बाहर से आके कहे आपने ये चीज यहाँ क्यों रखी हुई है, वो वहां क्यों रखी हुई है, आप कहती हैं तुम कौन होते हो कहने वाले, मैं इस घर की मालिक हूँ। तो मालिक होना अब आप खुद समझ लें कि जब अल्लाह ताला को आप मानते हैं कि वो रब है तो आपने मान लिया कि वो मालिक है, और सिर्फ मेरा आपका नहीं सारी कायनात का मालिक है। और फिर जब हम कहते हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आपका जिस्म तो है नहीं, आपने तो कहा रब्बुल आलमीन तो वो है, तो मालिक तो मेरे मेरे जिस्म का वो है। और इसी तरह वो सैयद भी है, इख्तियार भी रखता है, आप पूरा पूरा इख्तियार, ये नहीं कि वो किसी को से पूछेगा जाके, किसी से उसको इजाजत नहीं लेने की जरूरत, वो पूरी अथॉरिटी रखता है जो चाहे करे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। तो इसमें भी इंसान उससे कोई शिकायत नहीं कर सकता। फिर मुरब्बी है, यानी आप नशो नुमा करने वाला, मेंटेन डेवलप करने वाला, दूसरे को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाने वाला। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो ही है जो मुनाइम है, नेमतें भी देता है और बगैर इंसान के मांगे नेमतें दी हुई है उसको, और बगैर इंसान के डिजर्व किए हुए। और अलकय्यम भी वही है कि यानी कायम रखने वाला उसको। अब यहां से हमें पता चला कि रब में कितने सारे माने आ गए। और जब हम कहते हैं, जब जितनी पुरानी दुआएं हैं वो रब से शुरू होती हैं, रब्बना आतिना, रब्बना तलमना, रब्बी, या जितनी भी पुरानी दुआएं आप देख लें रब, क्योंकि इंसान का जो अल्लाह ताला के साथ पहला रिश्ता है ना वो रब और बंदे का है। जब आपने उसको रब मान लिया ना, कह दिया ना वो रब है, तो इसका मतलब है कि आपने खुद ब खुद मान लिया है कि मैं बंदी हूं उसकी। बिल्कुल इसी तरह ये रब का जो वर्ड है ना, इसका ऑपोजिट भी होता है, यानी जिस जैसे माँ बच्चा, बाप बेटा, ठीक है, उस्ताद शागिर्द, तो इनके ऑपोजिट है ना, यानी इसके उस्ताद है तो आपको पता होगा कि इसका मतलब भी, इसका कोई शागिर्द भी होगा। जब आप किसी को कहते हैं ये उस्ताद है मेरा, या आप उसको उस्ताद साहब या उस्ताजा कहते हैं, तो इसका मतलब आपने क्या बता दिया कि मैं इसकी स्टूडेंट हूं। ठीक है, अब इसी तरह आपने किसी को कहा, किसको पुकारा आपने माँ, तो अब लाजमी बात है इसका मतलब है कि आप उसकी बेटी हैं। किसी को आपने कहा कि डॉक्टर साहब, तो इसका मतलब आप उसके पेशेंट हैं। अब आप देखें इसी तरह जब आप कहते हैं रब, तो फिर इसका मतलब आपने ये मान लिया कि मैं उसकी बंदी हूं, रब्बुल आलमीन ही मान लिया। चलो सिर्फ आपने कहा, ये नहीं कहा कि मेरा रब है, रब भी नहीं कहा आपने, कहा कुरान खोलते ही आपने कहा तमाम जहानों का रब, तो इसका मतलब है कि आपने मान लिया कि मेरा भी रब वही है। और जब आपने ये मान लिया तो आपने ये असल में क्या माना है कि मेरा मालिक वही है, और मेरी मुझे नेमतें देने वाला वही है, और मुझे पालने वाला, मुरब्बी के अंदर क्या माना है, पालने का, मुझे पालने वाला वो, ये पालने के अंदर ना सारी जरूरियात है। अब आप कहते हैं ना माँ पालती है बच्चे को, तो क्या करती, सिर्फ फीडर पिला के छोड़ देती है? नहीं, वो उसके डायपर भी चेंज करती है, वो उसको गर्मी सर्दी से भी बचाती है, वो उसको बीमार हो जाता है दवा भी देती है, वो हर चीज यानी उसकी पूरी करती है ना, वो ये नहीं कहती ये वाला मेरा काम है ये वाला मेरा काम नहीं है। नहीं, तो जब वो मुरब्बी है ना तो वो सारी जरूरियात ही पूरी करता है, हर तरह से केयर करता है, केयर टेकर आप जिसको कह ले, वो केयर टेकर है। ठीक है, और जाहिर है जो कोई केयर टेकर होता है ना उसको फिर मोहब्बत भी होती है जिसकी वो केयर कर रहा होता है, मोहब्बत होती ही है तो केयर करता है ना, और फिर वो अल कय्यिम भी है। वो मेक श्योर करता है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस रहे, तुम एग्जिस्ट करो, और उसके करने से ही बंदा एग्जिस्ट करता है। समझ आ गई? तो कितने सारे माने आपने एक रब के लफ्ज के अंदर देख लिए और समझ लिए कि रब कोई एक ऐसे ही वर्ड नहीं है, बल्कि मेरा और अल्लाह ताला के दरमियान का रिश्ता जो है वो क्या है कि वो रब है और मैं बंदा हूं। और रब में खालिक का माना भी होता है। जब आपने कहा वो रब है तो एक और तरह से इसको देखें तो उसके तीन माने भी बयान किए गए हैं। नंबर 1, वो अकेला खालिक है। ठीक है, जब आपने कहा रब्बुल आलमीन तो सारे जहानों का, इसका मतलब अकेला खालिक है। नंबर 2, वो मालिक है, जो अभी हमने दूसरी इसकी जो यानी तारीफ थी उसमें भी मालिक का लफ्ज पढ़ा है ना, कि मालिक है, वो मिल्कियत है उसकी। नंबर 3, वो अकेला मुदब्बिर है। मुदब्बिर मतलब तदबीर करने वाला, यानी इनकी सारी जो प्लानिंग है, कौन ने किस वक्त मरना है, किस वक्त दुनिया में आना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, किधर रहना है, उनकी सारी प्लानिंग उसके हाथ में है, सारे फैसले उसके हाथ में है। कितना किसको रिस्क मिलेगा, कितनी किसकी जात कैसी होगी, सब सबकी प्लानिंग वो करने वाला है, तदबीर करना। तो रब भी कोई और नहीं हो सकता। जब फिरौन ने कहा था ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा आला रब हूं, तो और उसने अपने आप को रब कहा, और उसने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का तारुफ करा रब का, तो उसने कहा रब तो मैं हूं, तुम किस रब की बात करते हो? तो उन्होंने फिर फरमाया रब समावाती वल अर्थ, वो जो आसमानों और जमीन का रब है। उसके आगे फिर वो लाजवाब हो गया, क्योंकि वो तो रब आसमानों जमीन का तो, और इसके दरमियान का जो रब है वो तो नहीं कोई इस चीज का दावा कर सकता। और यहाँ पे आलमी, आलम का लफ्ज अलामत से है निकला हुआ, इसलिए कि आलम यानी मखलूक अपने पैदा करने वाले और बनाने वाले पर निशान है, उसका साइन है, उसकी निशानी है, उसकी वहदानियत पर अलामत है, अलामत से समझे ना। तो इसके अंदर कौन कौन फिर आ जाता है आलम के अंदर? बाज कहते हैं जो इन जहानों के अंदर रहने वाले हैं वो सारे आलमीन में है। इसी तरह आलमीन में जहान, जब हम कहते हैं जहान तो यानी जितने जहान पाए जाते हैं, चाहे वो फरिश्तों का है, चाहे वो जिन्नों का है, चाहे वो इंसानों का है, जानवरों का है, ये फूल पौधों का है, या कीड़े मकोड़ों का है, जितने भी जहान है उनका रब, उनका मालिक भी, उनका परवरिश करने वाला भी, जिसमें उनकी खबरगीरी भी है, उनकी निगेबानी भी है, उनको ना परवरिश करना है ना, केयर करता है, तो और उनका हाकिम मुदब्बिर भी है, इंतजाम भी उनका करता है कायनात की हर चीज का। कोई चीज उसकी निगाह से अगर ओझल हो जाए तो फिर वो कैसे उसकी टेक केयर करेगा? इसका मतलब हर चीज उसकी निगाह में, इसका मतलब हर चीज के बारे में वो जानता होगा तो केयर करेगा ना, उसकी खबरगिरी करेगा और उसका इंतजाम करेगा, और किसी चीज की एग्जिस्टेंस का वो मेक श्योर तभी करेगा ना जब उसको उसके बारे में पता होगा। तो अल्लाह ताला वो है जो सारी जहानों के लिए वो उनको चलाने वाला, उनको उनका मालिक भी, उनका खालिक भी, उनका मुदब्बिर भी, और उसके लिए सारी तारीफ इसीलिए कि वो ही है अकेला, अकेला वो ही है रब, उसके सिवा कोई रब नहीं। और आलमीन में जैसे मैंने आपको कहा कि तमाम जमाने भी आ गए, तमाम सोसाइटीज पिछली गुजरी भी जितनी गुजरी हैं सब एक आलम है। 1000 साल पहले एक और आलम था, 2000 साल पहले एक और, 100 साल पहले भी एक और आलम था। यहाँ पे भी कोई और लोग रहते थे, कोई और तरह के लोग थे, कोई और तरह की उनकी तरीके थे, वो भी सब आलम में ही आते हैं। तो आलम के अंदर जहां हमने देखा कि इंसानों का, जिन्नों का, फरिश्तों का, इन इन सबको भी इसका मतलब है कि जरूरत है कि कोई इनको चलाए, कोई इनको सस्टेन करे, कोई इनको अता करे, कोई इनको कायम रखे, कोई इनको इनकी परवरिश करे, कोई इनको आगे बढ़ाए। हर एक को जरूरत है और इसलिए हर एक का रब वो ही है, ठीक है। और ये सब निशानी है अल्लाह ताला की, मैंने कहा ना ये निशान के लिए। सारी मखलूक सिवाय अल्लाह ताला की जात के वो आलम के अंदर है, आलमीन सारे हैं, यानी सब अल्लाह ताला के सिवा तमाम मखलूक आलमीन में आ गए, ये आप समझ लें। चाहे वो मखलूक खुश्की में है, तरी में है, आसमानों में है या जमीन में, एक एक जमाने वाले भी एक एक आलम कहलाएंगे वो भी। यानी अब हम ये कहें कि आज तो हम सोच रहे हैं कि आज की जो मछलियां हैं, आज की जो स्पीशीज हैं हैवानात के या चरिंद परिंद के, वो एक आलम है। लेकिन जो पहले थे 100 साल पहले तो कोई और थे, वो भी एक आलम था। उससे पहले कोई और थे, वो भी एक आलम था। तो कुल मखलूक कहीं पे भी किसी जमाने में भी हो, आज भी और जो कल भी होगी, आसमानों में भी और जो जमीनों में भी और जो उनके दरमियान है, चाहे हमें उसका इल्म है या नहीं है, मे भी किसी और प्लैनेट्स में कोई और मखलूकात रहती हैं, हम उनको एलियन कह देते हैं, हमें उनका नहीं पता, वो सब भी आलम में है और ये सब अल्लाह ताला की निशानी है। और वो चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो सभी आलम में है। जमीन और उसकी सारी मखलूकात, आसमान और उसकी सारी मखलूकात का रब, और ये सब मैंने जैसे बताया आलम का लफ्ज अलामत से है, निशानी से है, ये सब अपने पैदा करने वाले की निशानियां हैं। सुभान अल्लाह, उसके ऊपर दलालत करती हैं कि वो है। जैसे शायर ने कहा था ना, एक अरबी का शेर है जिसका तर्जुमा है कि किस तरह अल्लाह की नाफरमानी की जाए, ताज्जुब है इस पे कि किस तरह उसका इनकार किया जाता है, हालांकि हर चीज में निशानी है, हर चीज में उसकी तौहीद की दलालत है, मौजूद है कि तौहीद के ऊपर ये प्रूफ है, एक एविडेंस है कि एक ही अल्लाह है पैदा करने वाला। तो सुभान अल्लाह, इन सारे कारखाना है कुदरत, कुदरत को चलाना, इसको सस्टेन करना, इसको रिस्क पहुंचाना, इसकी केयर करना, कोई एक चीज की थोड़ा ही है। हम तो सिर्फ अपनी दुनिया, अपनी अर्थ को ही बहुत समझे बैठे हैं ना इंसान की, देखे अकल, कि वो ये समझता है बस जमीन के ऊपर जो कुछ है बस वही है, और जमीन की चीजों के ऊपर ही हम बात करते रहते हैं, आसमान में इससे कहीं ज्यादा है, और खुश्की के ऊपर जितना उससे कहीं ज्यादा, समुद्रों में और समुद्रों में जितना उससे कहीं ज्यादा इस कायनात में, सितारों सैयारों को ही आप मालूम करना चाहें तो अकल दंग रह जाती है। इंसान कहता है कि मैं थक गया हूं, मेरी अकल जहां पे खत्म होती है वहां पे शुरुआत है। कायनात इतनी बड़ी है अल्लाह ताला की, उस सारे का रब। अब सोचे तो सही, हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, जब इसके ऊपर ही अगर आप रुक जाए ना, तो देखिए वही बात है ना कि अल्लाह ताला की जात वो है कि इंसान दंग रह जाए, वो कैसे इस सारे को चलाने वाला वो रब कौन होगा, वो अल्लाह तेरी जात कैसी है। इंसान अमेज्ड हो जाए, इन ऑ ऑफ हिज क्रिएशन, और उसकी जो रबूबियत है उससे इंसान हैरान और मुतहैर रह जाता है। अल्लाह तू है, एक चीज का नहीं चलाने वाला कि हमको को ये इस चीज को, कितनी बेवकूफ है जिन्होंने रोजी रोटी देने वाला एक खुदा बना लिया, इसकी देवी लक्ष्मी दिल भी अलग है, और जो कोई और औलाद देने की अलग है, और अच्छाई और बुराई की अलग है। कैसे बेवकूफ हो, देखो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही इंसान के शिर्क को खत्म कर देता है, अगर सिर्फ इस एक आयत के ऊपर ईमान ही आ जाए ना, शिर्क जड़ से कट गया। कि देखो जब आपने मान लिया कि एक रब है जो सबको चला रहा है, आलमीन को, उन आलमीन का मुझे इल्म हो या ना हो, मगर तारीफ सारी की सारी उस सिर्फ उस अल्लाह को सजावार है, यानी वो ही मुस्तहिक है, वो ही डिजर्व करता है उस सारी तारीफ और शुक्र का, वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है, क्योंकि वो मालिक यौमिद्दीन है, तो अलहम्द भी तो उसी की होनी चाहिए। और हमेशा से है और हमेशा उसी की रहेगी, क्योंकि वो हम्द के लायक है। ये नहीं कि कोई करेगा तो फिर होगी, जब ये सारी मखलूकात मिट जाएंगी तब भी तारीफ उसी की है, क्योंकि वो तारीफ के काबिल है, उसके अंदर खूबियां हैं, उसको मोहताजी नहीं किसी की कि कोई बोले अल्हम्दुलिल्लाह तो उसकी तारीफ हो। ये तो इंसान को सबक दिया जा रहा है कि तुम भी अल्हम्दुलिल्लाह बयान करो, क्योंकि वो रब इस काबिल है कि उसकी तारीफ की जाए। तो कितना हमारे मुंह से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, कितने हम दिल से बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कितनी दफा शऊर से बोलते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और इस मोहब्बत से और ताजीम से बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो है ही वो जो मोहब्बत और ताजीम से बोली जाए। अल्लाह ताला के नाम के अंदर ही कैसी मोहब्बत है कि वो जिसकी तरफ कोई मोहब्बत से बढ़ता चला जाए और बेचैनी में बढ़े और अपनी मोहताजी में बढ़े, जिसकी तरफ हर एक गिरियाजारी उससे करे, और वो जात जो छुपी हुई और वो जात जो बुलंद उसी के लिए है, वो है रब आलमीन का, जहानों का, और सारे जहान उसी के मोहताज है, अपनी सस्टेनेंस के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, नेमतों के लिए, अपने परवान चढ़ने के लिए, वो सब उसी के मोहताज हैं कि वो ही उनको पैदा करेगा तो वो पैदा हो सकते हैं, और वो ही उनको चलाएगा तो वो चल सकते हैं। तो कितना प्यारा ये एक सबसे प्यारा तारुफ अल्लाह ताला ने अपना कराया है, और इसके ऊपर जितना आप तदब्बुर करें, एक आयत को लेकर बैठ जाएं और इसके ऊपर तदब्बुर करते रहें और गौर व फिक्र करें जहानों में, और फिर देखें कि वो कैसा रब है, और आपकी अकल जवाब दे जाएगी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि वाकई अल्लाह ताला तेरी तो तारीफ हम कर ही नहीं सकते या अल्लाह। वाकई फिर इंसान कहेगा कि अल्लाह तेरी तारीफ वैसे ही है जैसे तेरी शान के लायक। अल्लाह ताला हमें सही फहम अता फरमाए। हम आज यहीं तक रखते हैं और इसी के ऊपर आप तदब्बुर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें इस जो कुरान का इल्म है इसको सही समझने की हमें तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक दे, और हमें हर किस्म के शिर्क से महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
تلاوت سنة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط